ओम शांति। अभी हम सबके सामने आदरणीय भ्राता मोहन भाई जी उपस्थित हैं। हम सभी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। मोहन भाई जी खुद इंजीनियर हैं और हमारी इंजीनियर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। साथ साथ हमारी जो ज्ञान सरोवर एकेडमी है उनमें सभी प्रोग्राम्स के कोऑर्डिनेटर है, सभी विंग के प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर भी है। बाबा के समय से हैं, साकार बाबा से आपका भी बहुत अच्छा अनुभव होता है। बाबा के ज्ञान को गहराई से चिंतन किया हुआ है। आपकी विशेषता है कि आप बाबा के नए नए विषयों को भी लेकर के एग्जीबिशन बनाते हैं। खास करके आपको पर्यावरण श्री के अवार्ड भी मिला हुआ है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक विशेष बाबा के रतन आप सबकी सेवा में उपस्थित है। तो अभी हम सुनेंगे, सब्जेक्ट कौन सा है, लीकेज और वेस्टेज को खत्म करके जमा का खाता कैसे बढ़ाएं। खजाना आपको बहुत मिला है ना, अभी वो खजाने को संभाल के कैसे रखने का। जो बर्तन है, कौन सा बर्तन है, बुद्धि रूपी बर्तन को कैसे ठीक रखो जहां से लीकेज ना हो, है ना, ताकि आपका जो भरपूर खजाना मिला है वो भरपूर रहे। ओम शांति भ्राता मोहन जी।
ओम शांति। हम सभी एक बार मिल करके उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा कि हम सब ने सुना है यज्ञ के आदि काल में ब्रह्मा बाबा के साथ सब मिलकर के बोला करते थे। उस समय तो केवल ओम ही बोलते थे, आज हम ओम शांति उस रीति से बोलेंगे। अपने अंदर गहरा श्वास एक बार भर के और फिर उसे धीरे धीरे निकालते हुए और उसे फिर ओम की ध्वनि के साथ हम श्वास को निकालते जाएंगे और इससे ओम ध्वनि करेंगे और फिर दूसरे श्वास में शांति की ध्वनि। ओ वास्तव में आज के पूरे टॉपिक का सार ही है, उस लीकेज और वेस्टेज को बंद करने का साधन ही क्या है, ओम शांति में स्थित हो जाना। जब दो शब्द हैं लीकेज और वेस्टेज, इसमें फर्क क्या है, लीकेज और वेस्टेज में क्या अंतर है। मटका तो सब यूज करते हैं, मिट्टी का मटका गर्मी के दिनों में पानी ठंडा करने के लिए, तो लीकेज कहेंगे क्रैक, अगर जैसे थोड़ा बस थोड़ा 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 निकल रहा है, एट ए टाइम नहीं निकल रहा है लेकिन लॉन्ग रन में निकल रहा है और कई बार पता भी नहीं चलता कि लीकेज है, कहां से है निकल रहा है, क्योंकि क्रैक है कहीं पर भी। और वेस्टेज तो जैसा बताया किसी ने, छेद अगर हो जाता है तो छेद में दूर से ही पता चल जाएगा, धार बन जाएगी कि ये वेस्टेज है। इस तरीके से वेस्टेज तो पता तुरंत चल जाता है और उस पर ध्यान जाता है और तुरंत ही उसे चेंज कर देंगे या उसे रिपेयर कर देंगे, लेकिन लीकेज जो है ना वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि स्लोली 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 वो होता रहता है, धीरे धीरे, और धीरे धीरे होते होते पता भी नहीं चलता। मानो क्रोध आता है, बड़ी तेज क्रोध आया एकदम, वो पता चल जाएगा, क्योंकि वो क्रोध जो है वो एकदम वेस्टेज है, मुंह से भी हो रहा है, आंख भी वैसा प्रदर्शन कर रही है, बोल भी, शरीर के हाव भाव भी, हर एक चीज से पूरा का पूरा वेस्टेज, ज्ञान का खजाना, सब शक्तियों के खजाने वेस्ट हो रहे हैं, और उस वेस्टेज का असर भी ना बहुत देर तक, कहते हैं मेडिकल डॉक्टर, कितने देर तक उसका असर रहता है, 72 घंटे तक, सही बताया, यानी 3 दिन 3 रात तक उसका असर रहता है, शरीर के कंप्लीट जो है मेटाबॉलिज्म उससे प्रभावित हो जाती है। तो ये तो वेस्टेज, इसमें बहुत समय की जो है कमाई चली जाती है। ये तो क्रोध का उदाहरण दिया, कोई भी विकार हो, क्योंकि बाबा भी हाँ, जो पुराने हैं उन्हें याद होगा कि हमें भी याद है जब हम तो 61-62 में ज्ञान में आए, तो तब बाबा की मुरलियां चला करती थी, साकार ब्रह्मा बाबा थे, बाबा की मुरलियां चला करती थी, बच्चे अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कर्म से अगर विकर्म करते हैं, कर्मेंद्रियों से, उसका पाप का खाता बनता है, बाकी मंशा में तो अंत तक आते रहेंगे, और मंशा में पाप का खाता बाबा ने उस समय कभी नहीं बताया। फिर ज्ञान धीरे धीरे जितना और सूक्ष्म होता चला गया, 1964-65-66 में बाबा का वाणी के ऊपर आया कर्मों से, कि अगर किसी को वाचा से भी दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, मतलब और मरेंगे यानी कि अंत मते सोगते कहते हैं ना, तो इसीलिए जैसे अंत में संकल्प होंगे, और अगर दुख दिया हुआ होगा किसी को वाचा से और कर्मणा से, ब्राह्मण लोगों का कर्मणा से तो डायरेक्ट इतना नहीं होता, लेकिन वाचा से अभी तक भी ये काफी उतना जितना कंट्रोल होना चाहिए, जो व्यवहार में रहते हैं, धंधों में रहते हैं अपने, और तो वाचा से भी। फिर बाबा का अंत में जब 67 के बाद से जो मुरलियां चलती थीं, उसमें खास मंशा संकल्प और वृत्ति पर भी बहुत ध्यान, बच्चे मंशा में भी संकल्प अगर आया तो उसके भी विकर्म बनते हैं, इतना ज्ञान भी हमारा धीरे 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 सूक्ष्म होता चला गया। जैसे कई बार बाबा कहते ना शुरू में, भाई क्यों नहीं बताया आत्मा बिंदी है या परमात्मा बिंदी है, पहले बताते थे अंडाकार है, अंगुष्ठाकार है, फिर स्टार शेप में है, हम लोग जब आए तब यही था स्टार, तो शिव बाबा बड़ा होता था उसके बीच में स्टार काट के लगा दिया करते, फिर और बाबा का ज्ञान सूक्ष्म, और बाबा का इसमें क्या जवाब होता है, पहले क्यों नहीं बताया, इसका क्या जवाब है, भाई कोई एमए की पढ़ाई पहली क्लास में ही थोड़ी पढ़ा दी जाती है, कोई पीएचडी, उस समय बच्चों की बुद्धि जैसी थी उस हिसाब से पहले वैसा बताया, फिर धीरे 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 सूक्ष्म। तो अभी भी ज्ञान जो है बहुत बहुत सूक्ष्म हो गया है, इसीलिए ये लीकेज और वेस्टेज का हमारे जीवन से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो इसमें और विषय के दोनों पार्ट इंटरकनेक्टेड हैं, तो सीधा सॉल्यूशन ही लेंगे समय के कारण, कि लीकेज और वेस्टेज के कारण तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन कारण के साथ साथ उसमें जो लीकेज वेस्टेज होता है उससे कंसर्न खजाना, वो अगर वेस्टेज और लीकेज होता है तो उसको हम कैसे रोकें, कैसे उसको बढ़ाते जाए, कम होने की तो बात नहीं होनी चाहिए बिल्कुल अभी लीकेज वेस्टेज, बल्कि स्टेशनरी भी न रहे, वो बढ़ना चाहिए। गुलजार दादी जी थोड़े दिन पहले एक क्लास करा रहे थे कि वर्तमान समय में वेस्ट हाँ, बच्चों के, बाबा ने एक तो सर्टिफिकेट दे दिया कि बच्चों को विकारी संकल्प तो नहीं आते, जो बाबा के बच्चे हैं अधिकतर, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते हैं, तो कई मुरलियों में बोला है ना। और दादी ने उसकी भी और गुह्यता में जाकर कि मैं एक बार ध्यान में जब गई, दादी बता रहे थे, तो बाबा ने व्यर्थ संकल्प की भी बहुत सूक्ष्म परिभाषा करी। क्या करी? हम अक्सर व्यर्थ समझते हैं भाई, कोई पास्ट की बातें हो, कोई व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, और भले विकारी ना हो, लेकिन बाबा ने क्या बताया कि हम मानो योग में बैठे हैं और योग की स्थिति हम चाहते हैं, बस आज बाबा का ही आनंद लें, सूक्ष्म वतन का ही। लेकिन उस समय अगर सेवा के भी विचार चले, किसी आत्मा के कल्याण के भी विचार चले, वो भी वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में व्यर्थ संकल्प है। कितनी सूक्ष्मता में बाबा, कोई ये व्यर्थ नहीं कहेंगे कि भाई अगर जो है, नॉर्मली हम समझते हैं भाई किसी की सेवा के लिए भाव उठ रहा है, उस आत्मा का कल्याण हो जाए, बाबा उसकी बुद्धि खोलो, खराब विचार नहीं है, लेकिन आज के संदर्भ में ये भी व्यर्थ विचार है, ऐसा बताया। उस संदर्भ में हम देखते चलेंगे कि लीकेज और वेस्टेज किन कारणों से होती है, और अधिकतर कारण तो आप सब जानते हैं, जो जिससे खजाने, जो बाबा ने इतने सारे खजाने दिए हैं वो हो जाते हैं। खजाने कौन कौन से दिए हैं बाबा ने? बाबा ने कई बार बताया है, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट खजाने समय और संकल्प। वैसे तो बहुत खजाने हैं, लेकिन नॉर्मल रीति से समझें तो लगभग 8-9 खजाने हैं जो जिन पर हमारा ध्यान होना चाहिए। समय का खजाना नंबर 1, संकल्पों का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, और अभी कल परसों की मुरली में भी क्या था, बोल का खजाना, याद है 2 दिन पहले ही, बोल और उसके साथ कर्मों का खजाना। ये है, क्योंकि हम ब्राह्मणों के ना, अज्ञानियों जैसे तो कर्म नहीं होंगे, अज्ञानियों जैसे बोल भी नहीं, लेकिन फिर भी जिस बोल में बाबा ने कहा कि वो जो बोल ईश्वर का स्नेही नहीं बनाते, वो बोल भी व्यर्थ बोल है, उसमें भी बहुत खजाने। फिर साथ में बाबा ने कहा स्थूल खजाना, ब्राह्मणों का स्थूल जो पैसा है, धन है, इन सब में मन तो आया, लेकिन धन, स्थूल धन रूपी खजाना, और क्या है, श्वास का खजाना। श्वास का कहते हैं ना, योग में आयु बढ़ती है, कैसे बढ़ती है आयु, विकारों में, लौकिक दुनिया में बोलते हैं भाई आदमी अपना श्वास लिखा कर लाता है, है ना। जब कोई विकार के वशीभूत, क्रोध के वशीभूत है, अहंकार के, कोई अंदर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, देखोगे उसके श्वास की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है, और जब तेज हुई उसमें ज्यादा श्वास खर्च हुए, इसका मतलब हमारा वो बैंक बैलेंस है वो खत्म, कम होता जा रहा है, तो नेचुरली खाली हो जाएगा कम समय में। तो इस रीति से बहुत सारे ज्ञान का खजाना, ये सब खजाने टोटल करेंगे लगभग 8-9-10 खजाने। अब खजाना इन सब के साथ, ये कोई भी खजाना बढ़ता है तो इसका नेट टोटल जो है वो खुशी, कोई भी खजाना, लौकिक दुनिया में भी स्थूल खजाना बैंक बैलेंस बढ़ता है, उससे भी खुशी बढ़ती जाती है। कोई बिजनेस सीजन बहुत बढ़िया गया, उसमें अच्छा चला गया, लाइक दैट, ऐसे ऐसे खजाने। अब इन कैसे लीकेज को, वेस्टेज को रोके और कैसे खजाने को बढ़ाएं, उस पर एक तो ध्यान विशेष देना है आज का ये विशेष, क्योंकि अगर निगेटिव ही सोचते रहेंगे, लीकेज हो रहा है, ये लीकेज हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है, तो बुद्धि उधर ही चली जाएगी। और उसके विपरीत अगर पॉजिटिव ही, कि इससे जो खजाना लीक हो रहा है वो खजाने को हम कैसे बढ़ाएं, वो सारी की सारी पॉजिटिविटी है। और इसके लिए हम वो अंधेरे का उदाहरण देते हैं, भाई अंधेरा हो जाता है तो अंधेरे को बाहर नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, लाइट ऑन कर दिया, प्रकाश आया तो अंधेरा अपने आप भाग गया। तो खजानों की तरफ ही अगर बुद्धि रहेगी, ये बढ़ाना है, ये खजाना है खुशी का, खुशी का खजाना ही सोचो तो चेहरे पर भी खुशी आ जाएगी, मन भी प्रसन्न। कोई खुशी का प्रसंग सोचो, बहुत जीवन के कई प्रसंग होते हैं, दुख का प्रसंग सोचेंगे तो दुखी जैसा भाव मन में आ जाएगा। तो इसीलिए खजानों को कैसे बढ़ाए, उसकी कुछ सात आठ विधि है, वो उस पर हम सब ध्यान देते चलेंगे। पहली बात कि विचार सागर मंथन वो हमें जरूर करना है। कहते हैं कई बाबा विचार सागर मंथन नहीं होता है, मुरली सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, वो तो है, लेकिन सबका ये अनुभव है मुरली सुनी अगर सुनने तक ही रही तो क्या होगा, हाँ उस वक्त अच्छा लगा, मुरली रिपीट करने जाएंगे, एक दो पॉइंट भले रिपीट भी कर ली, लेकिन ये ज्ञान का खजाना अगर इसे अपना नहीं बनाया है तो बस थोड़ी देर में ही जब तक बाहर निकले और एक दो घंटे के बाद भी अगर आप ना उसका मनन चिंतन करेंगे कुछ नहीं होगा। तो इस कारण से जैसे बाबा ने कहा है, अमृत वेले जब से उठते हैं तो अपने तन और मन दोनों की दिनचर्या बनानी चाहिए, तन और मन की। तन की दिनचर्या तो बनाते हैं, अभी अमृत वेले का योग है, इसके बाद भाई मुरली सुनेंगे, पढ़ेंगे, दैनिक कर्म करके क्लास में जाना है, उसके बाद ये काम करना है, ये सेवा, तो तन की तो बना लेते हैं, फिर भी मन की नहीं बनाते। अब बाबा ने कहा मन की दिनचर्या अगर नहीं बनती है तो तन की दिनचर्या भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मन की दिनचर्या इस समय, किस समय हमें किस रूप में, और वो मुरली के टाइम से फिक्स हो सकता है। मुरली के खजाने को, पहला खजाना ये, जब हम मुरली सुनने जाते हैं सबसे पहले तो अमृत वेले तन और मन की दिनचर्या बनाए। दूसरी बात, जब मुरली सुने तो उस मुरली को हम समाएंगे कैसे, समाते जाएं, कहते हैं ना वो खजाना अपना बनता जाए, कैसे बनेगा कि उसको उस स्वरूप में स्थित होकर मुरली को सुने। यानी कि बाबा जब बता रहे हैं कि भाई परम धाम की बात है, वहां पर शांति है, सुख नहीं है, वहां से तुम बच्चे आए थे, तो बस वो ही विजुअलाइज करें परम धाम में, बुद्धि से हम परम धाम पहुंच जाए। जैसे बाबा स्वर्ग का वर्णन कर रहे हैं, उस समय स्वर्ग में क्या सुख होगा, रास खेल कूद मौसम प्रकृति सारी चीजें उस अनुभूति में खो जाए। जब बाबा कोई और सेवा की बात कर रहे हैं तो सेवा में, जैसे यहां आके उन सेवा की चीजों में पूरा बुद्धि का अटेंशन रहे, और वो स्वरूप में स्थित होकर अगर वो पॉइंट सुनते हैं वो हमारी बन जाती है। वो जैसे कहते हैं, बाबा कहते हैं मुरली समाते जाओ, उस चीज को हम समाते जाते हैं। इसीलिए अमृत वेले एक तो दिनचर्या, दूसरा मुरली को सुने तो उसका स्वरूप बन करके सुने जो भी बाबा पॉइंट। और चूंकि यहाँ तो सब बहुत पुराने पुराने ही बैठे हुए हैं, इसीलिए थोड़े में ही वो पॉइंट को समझ जाएंगे, जिससे हम ज्यादा पॉइंट्स को आपस में विचार कर सके। विचार सागर मंथन अगर नहीं होता, तीसरी बात, तो क्या करें, इसके लिए बाबा ने क्या विधि बताई है, कोई स्थूल विधि हो, नहीं वही स्थूल विधि, इसके लिए सबसे सहज विधि है अपने जो चित्र बने हुए हैं चित्र के सामने जाकर बैठ जाओ। मानो कल्प वृक्ष के सामने जाकर आप बैठ गए हैं, और कल्प वृक्ष के सामने जाके जड़ से शुरू किया, नीचे बीज रूप है ना, बाबा ब्रह्मा बाबा मम्मा बैठे हैं, अष्टवतन बैठे हैं, तो उसमें यही इमेजिन करो मैं भी जैसे सामने बैठी हुई हूं, मैं इस सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष की बीज रूप आत्मा जड़ हूं, मेरे आधार पर ही ये पूरी सृष्टि खड़ी हुई है। कितना नशा चढ़ेगा, ओहो मैं आधार मूरत हूं, इस पूरे सृष्टि रूपी वृक्ष का मैं बीज हूं। फिर और उसके तने पर जैसे प्रदर्शनी के चित्र या ये चित्र सप्ताह कोर्स में समझाते हैं, ऐसा अपने से बातें करते जाओ, जैसे अपने को समझा रहे हैं चित्र के सामने, अलग अलग चित्र के सामने जितनी वैरायटी होती है उतना अच्छा होता है। खाने में भी बातों को मालूम है भाई, जब कभी कोई खास भोजन होता है, अम्मा भोजन, अलग अलग और वैरायटी बनाई जाती है और रिचनेस आ जाती है। ऐसे ही कभी किसी चित्र के सामने, बाबा के इतने सारे चित्र हैं, चित्रों के सामने बैठ के अपने को समझाओ, उससे क्या होगा, खुद ही खुद समझा रहे हैं तो विचार सागर मंथन की विधि अपने आप ही इसके अंदर, क्योंकि जब समझा रहे हैं ना, तो ऐसे थे सतयुग में 8 जन्म लिए, तो वहां पर ये डबल ताजधारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा, मतलब जैसे ही आएंगे तो एक एक पॉइंट जो है बुद्धि में आती जाएगी। ये विचार सागर मंथन करने की एक सहज विधि है, तो उससे क्या होगा, और एक के बाद एक पॉइंट आती रहेगी, तो फिर योग भी उसके आधार पर ही और बढ़ता जाएगा। एक है विचार सागर। फिर और चौथी चीज क्या है, अभ्यास। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हर एक को जीवन में यह अनुभव है, यहां पर ही माताएं बैठी हुई हैं, अपना वो इमेजिन करें जब वो छोटी थी और उन्हें घर में ना किसी बड़े ने, माता जी ने, दादी के ने भाई रोटी बनाना सिखाया, तो क्या पहली बारी रोटी गोल बन गई? नहीं बनी होगी, कुछ चकले पे चिपक भी गई होगी, टेढ़ा मेढ़ा सारा नक्शा बन गया होगा। लेकिन अब ऐसा अभ्यास हो गया ना, अभ्यास, बस बात भी करते जाएंगे इधर और हाथ चल रहे हैं, बेलन अपने आप घूमती भी जाएगी और गोल भी होगी और इवन भी होगी, मतलब कोई बहुत मोटी बहुत पतली नहीं होगी। भाई लोग भी और बहनों को भी अभ्यास होगा, जब शुरू में साइकिल सीखी होगी बैलेंस, तो एक ही बार में तो बैलेंस नहीं हुआ होगा, गिरे भी होंगे फिर खड़े होंगे। छोटा बच्चा भी अगर उसी वक्त से ही सोच ले, छोटा बच्चा ना क्या होता है, बस जब जैसे ही चलना सीखता है, थोड़ा सा खड़ा होना सीखता है, सब बड़ी खुशी होती है, फिर एक दो कदम बढ़ाता है, चलना सीखता है, माता पिता सबको खुशी होती है, और उसके बाद बड़ा तेजी से चलता है तो कई बार गिर जाता है। क्या होता है फिर, माताओं को तो बहुत अनुभव है ना, गिर गया रोने लगा, रोता है, थोड़ा तो कोमल होता है नेचुरली, थोड़ा बहुत चोट लगी होगी, तो माताएं क्या करती हैं चुप कराने के लिए, बड़ी यूनिक विधि है वो, तो उठा के वो तो करेंगे ही, लेकिन अक्सर करके धरती जैसे उसको मारते हैं ना, जैसे भाई तुम्हारा दोष नहीं, ये धरती का दोष है, उसने तुमको हर्ट किया। उससे क्या होता है, जीवन भर के लिए उसके माइंड में ये सेट हो गया कि मैं तो कभी गलती नहीं करता, हमेशा दूसरे ही गलती करते हैं और उसकी वजह से ही मुझे, मेरी फीलिंग हर्ट होती है। ब्लेम गेम वहीं से बचपन से सीख जाते हैं और सारे जीवन भर ये गेम चलता रहता है। इसीलिए अभी ये अपने को देखना है, कोई भी बात हो, कोई घटना हो, लेकिन अपने अंदर, हम बाहरी कारणों पर जाते हैं तो दूसरा हमेशा गिल्टी लगता है, दूसरा ही दोषी लगता है, उसने ऐसा कहा तो मुझे क्रोध आया, उसने ऐसा किया तो मैंने भी ऐसा किया, यानी कि दूसरे को ब्लेम करा उस चीज के लिए। लेकिन जब हम अपने अंदर जाएंगे ना, तो हमेशा पता चलेगा कि उसने तो एक्ट किया लेकिन रिएक्शन तो मेरे हाथ में था, उसने जो किया वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैंने जो रिएक्ट किया वो तो मेरे कंट्रोल में था ना, और मैं अपने रिएक्शन को ब्लेम ना करके उसके एक्शन को ब्लेम कर रहा हूं, ये एकदम गलत बात है। आई एम टू बी ब्लेम्ड। मतलब मैं ही दोषी, क्योंकि ये तो मेरे हाथ की बात थी रिएक्शन। इस कारण से जब कभी भी ये अक्सर करके संबंधों में परिस्थितियों में लीकेज का वेस्टेज का ये एक मुख्य कारण और हो जाता है संबंधों में। तो इस कारण से जो भी उससे संबंधित खजाना होता है उस समय वो लीकेज होता रहता है। और क्या है साथ साथ, हाँ देखो बाबा ने कहा है हम सब मनुष्य हैं, तो मुख्य सबसे ज्यादा जो अंग है, हाँ क्रिमिनल अंग कौन सा है? आंखें, कई बार बाबा ने कहा है। और इसीलिए बाबा ने कहा है ये आंखें अगर ना जितनी हमारी निर्दोष हो जाएंगी, सिविल हो जाएंगी, उतना हम अपने को कर्मातीत अवस्था के निकट पाएंगे। और उसके लिए क्या सोचें? नहीं, ये सब तो विधि बहुत अच्छी है, भाई भाई की विधि है, सब बाबा के बच्चे हैं, आत्मा आत्मा है आदि आदि, लेकिन बेसिकली ना इसीलिए बाबा ने कहा है अंत में बच्चों की स्थिति कैसी होगी, साक्षी दृष्टा की। तो इसमें साक्षी दृष्टा बनने के लिए जो आंखों से कनेक्टेड हैं वो पांच बातें विशेष, क्योंकि साक्षी दृष्टा माने हमारी ऐसी स्थिति हो गई कुछ भी हो रहा है उसमें हम निर्लिप्त हैं, मान अपमान निंदा स्तुति हानि लाभ साक्षी होकर के देखते हैं, अपना समझते हैं तो अगर हानि होती है अपमान होता है एकदम रिएक्शन होता है, एकदम हमारा वो जो भी है ना स्वयं पर कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन जो साक्षी दृष्टा होके दूसरों के केस में हम साक्षी होते हैं ना, दूसरी सड़क पर जा रहा है, दूसरे का कोई एक्सीडेंट देखा, थोड़ा सा कुछ सेकंड कुछ वो होगा आगे चल देते हैं, लेकिन अपना ही अगर हो और कोई जरा सा भी माइनर भी होता है तो भी अपनी फीलिंग, क्योंकि उसमें हम साक्षी दृष्टा नहीं। तो साक्षी दृष्टा को का अभ्यास तो हमें है दुनिया के सब लोगों के लिए जो अपने नहीं है। तो इस कारण से अब बाबा चाहता है साक्षी दृष्टा जिधर हमारा मोह है, जो हमसे संबंधित है उनके प्रति साक्षी दृष्टा हो। तो इसके लिए पांच बातें कौन सी? पहली बात हा? दृष्टा कौन है? ये दृष्टि जो है ना, ये आंखें क्रिमिनल है। इसमें बाबा का भाव क्या है? आंखें तो जड़ है, आंखें के भाव क्या है? भाव समझना चाहिए, क्योंकि आंखें नहीं देखती, आंखें दृष्टि हैं, और दूसरी चीज जो दृष्टा है आत्मा वो आंखों के द्वारा देखती है। तो दृष्टा आंख है, इसीलिए साक्षी दृष्टा कहा है, साक्षी दृष्टि नहीं है, क्योंकि आत्मा देख रही है और ये आंख तो खिड़की है। अब खिड़की से कुछ भी देखो, खिड़की को कोई सुख दुख का अनुभव थोड़ी होगा, लेकिन देखने वाले को अकॉर्डिंग। एक है दृष्टा, दूसरी है दृष्टि, तीसरी चीज है दृश्य, जो हम बाहर देखते हैं इनके द्वारा चारों तरफ वो दृश्य है, वो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। बाहर की चीज को हम अंदर लेते हैं और अंदर की चीज को आंखों के द्वारा बाहर वो प्रकट होती है। किसी के प्रति बहुत अगर क्रोध आया, क्रोध का भाव भी आंखों से प्रदर्शित हो जाता है। किसी के प्रति बहुत प्रेम है स्नेह है, उसके भाव भी आंखों के द्वारा प्रकट हो जाते हैं। तो अंदर की चीज को ये बाहर लाती है, बाहर के दृश्य को अंदर ले जाती है। ये तीसरी चीज है दृश्य। और जो इस रीति से कार्य व्यवहार करता है कि मैं दृष्टा, इस दृष्टि के द्वारा सब दृश्य देख रही हूं, यानी कि एक्टर रूप में मैं अपने को समझता है ये सब दृश्य हैं। एक्टर को भी यही होता है ना, मानो कोई बहुत ऐसा दृश्य उसे पार्ट प्ले करना है, तो वो जानता है कि ये मैं एक्ट कर रहा हूं। तो इसमें भी अगर हम भाई मैं दृश्य, ये दृश्य देख रही हूं, मैं आत्मा दृष्टा इन आंखों के द्वारा ये दृश्य देख रहे हूं। ये स्थिति जब होती है तो क्या होता है, तो ही इतिहास में हमारा दृष्टांत बनता है। हम इतिहास को पढ़ने वाले ही नहीं है, सब यहां पर इतिहास लिखने वाले हैं। एक एक बी के इतिहास लिख रहा है पूरा। तो ये जो है हमारा दृष्टांत बनता है पूरा। और इन सब के मूल में, इन सब का आधार क्या है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारी जो बाबा कहते हैं ना वृत्ति। तो इस रीति से हमारा दृष्टिकोण जितना पॉजिटिव होगा, जितना सार्थक होगा, उसी रीति से हम दूसरे को देखेंगे। हम मानो कोई ऐसा व्यवहार है घर में, बड़े बहुत अच्छा मूड है, सब कुछ है, तो कोई दुश्मन भी मिलेगा ना तो भी हमारा मूड खराब नहीं होगा, क्योंकि अंदर ही अंदर मूड अच्छा है। दृष्टि से देखेंगे तो न करते हुए भी थोड़ा हेलो कह देंगे, ओम शांति कह देंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर हमारा दृष्टिकोण ही नेगेटिव होगा, किसी के प्रति किसी ने हमारे साथ खराब किया है, कुछ भी अपमान किया है, सदा नुकसान पहुंचाया है, तो अगर हम उसके साथ अंदर से हम ठीक हैं, हमारा दृष्टिकोण अच्छा है, हम इस एटीट्यूड के साथ देख रहे हैं कि मैं दृष्टा दृश्य से इस दृश्य को, जिसमें वो आत्मा है जिसने हमारा नुकसान किया, उसे देख रही हूं दृश्य को, तो क्या होगा, चूंकि हमारे माइंड में होगा कि हम एक्ट प्ले कर रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, तो उसके प्रति कभी भी घृणा भाव, ईर्ष्या भाव, बदला लेने की भावना, ऐसा भाव कभी नहीं है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ही बदल गया। इस कारण से ये साक्षी दृष्टा बनने के लिए इन पांच बातों की सदा अगर स्मृति रहेगी और उसे हम जीवन में लाके एक्ट करते जाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल अंत में जो बाबा ने कहा है ना कर्मातीत अवस्था, उससे पहले की ये स्टेज है। मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का मुझे काफी मौका मिला, और सबसे ज्यादा बात तो ये है कि अंतिम दो दिनों में हम ब्रह्मा बाबा के साथ ही साथ यहाँ मधुबन में थे, 17 और 18 जनवरी 1969। तो बाबा की हमें कर्मातीत अवस्था देखने का और उसे अनुभव करने का बहुत मौका मिला। तो अभी तो हम ये लीकेज वेस्टेज का और ये खजाना कैसे बढ़ाएं, इस बात पर चिंतन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम साकार बाबा, क्योंकि वो ही एक रोल मॉडल है। कितने समय में संपूर्ण बन गया, कितने समय में, सिर्फ 33 वर्ष में, 36 में ज्ञान हुआ, पहले साक्षात्कार हुए और 69 जनवरी में तो वो बन गए बाबा। सारे पुराने विकर्मों को भस्म कर लिया, जितना उल्टी सीढ़ी चढ़े हुए थे वो सब उतर करके पूरा पॉजिटिव। और उनके संदर्भ में अगर हम अपने को देखें तो अभी तो हम लोग बहुत उसके निकट जितना होना चाहिए उतना निकट नहीं प्रतीत होता है। हाँ वो तो है, क्यों, क्योंकि वो 33 और अपने तो कितना 50 से ज्यादा वर्ष तो मुझे ही हो गया, 50, 60, 80 वर्ष वाले भी सब यज्ञ का अभी 80वां वर्ष चल रहा है। तो भाव क्या है कहने का, कि ज्ञान को जिसने जितना सीरियसली लिया है और उतना सीरियसली लेने के साथ साथ उसका अभ्यास किया है, केवल सुनने तक नहीं, सुनते तो मुरली हम सभी है, रोज सुनते हैं, लेकिन उस मुरली को हमने अपना कितना बनाया, पॉइंट कितना बनाया, उस पर मनन चिंतन होगा तो ऐसे ऐसे हर पॉइंट के आपको ना नई नई चीज मिलेंगी, जैसे साक्षी दृष्टा की ये बात है। इसी प्रकार से कौन से खजाने को किस रीति से सेव किया जाए, और इसमें क्या है, इनमें दो शक्तियों की, और वैसे आठों शक्तियां हैं और आठों शक्तियों पर बराबर ध्यान तो उतना नहीं दिया जा सकता, प्रतिदिन ध्यान रहे, लेकिन बाबा ने कहा है खजाना कोई भी वेस्टेज न हो, बढ़ता जाए, उसके लिए दो शक्तियों की विशेष आवश्यकता है। कौन सी दो शक्तियां? सहने की शक्ति, समाने की परख शक्ति, बिल्कुल बहुत ठीक है। इन सब के अंदर सबसे बड़ी है निर्णय शक्ति, क्योंकि परिस्थितियां तो हर मोमेंट हमारे सामने आती हैं, और हम सबका ये अनुभव है कई बार क्या करूं, ऐसे करूं, ये करूं या ना करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, अभी करूं या आगे के लिए छोड़ दूं आगे निर्णय। तो कई बार इन चीजों में हमारा समय भी बहुत जाता है, निर्णय हम नहीं ले पाते। तो इसीलिए एक तो निर्णय शक्ति हमारी तीव्र हो, और निर्णय शक्ति उतनी तीव्र न होने का क्या कारण है? एकाग्रता की कमी, पावर ऑफ कंसंट्रेशन। जितना एकाग्रता हमारी ज्यादा होगी, उतना हमारी निर्णय शक्ति भी अचूक होगी। कोई बात हुई तुरंत, हम तो ब्रह्मा बाबा को देखते थे, कोई भी बात हुई पट से बाबा ने निर्णय लेके थोड़ी देर बस अंदर गए, अपने निर्णय लिया, और एक तो उसमें टाइम भी बचता है, एनर्जी भी बचती है बहुत, और साथ ही साथ वो एक्शन तुरंत हो जाता है। तो हम बच्चे उतना क्विक, इसमें मतलब ये नहीं कि हम तुरंत ही गलत हो सही हो, नहीं, एकाग्रता की शक्ति को इतना बढ़ाएं कि निर्णय लेने की सक्षमता हम में आ जाए। हाँ, समय शुरू में समय लेने की आवश्यकता है, वो भले लें और अंदर जाए, लेकिन जितनी जितनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी उतना उतना क्या होगा। हम ब्रह्मा बाबा को देखते थे कि बाबा के सामने पोता मेल लेके जाते थे कोई भी, बस बाबा ने देखा। अब बाबा ने कई साकार मुरलियों में कहा है, बच्चे अपने जीवन कहानी लिखो, याद है? यहाँ पर भी बहने अपने कहते हैं बाबा को पत्र लिखो, लिखा होगा ना भट्टी में। तो उसमें क्या है, कोई भी बात जब जीवन कहानी लिखते हैं, हमें भी याद है, हम लोग जब आए तो बाबा ने कहा बच्चे जीवन कहानी लिखा। ऐसे 17-18 वर्ष के थे, और क्या होगा, तो फिर भी छोटी मोटी बातें भी, ये लड़ाई झगड़ा हो गया, फलानी चीज ये उठा ली, जो भी करके लिखा, और बस बाबा की निगाह इतनी तेज थी, एकाग्रता, हिसाब भी जो लेकर के जाता था, अकाउंट भी है, पोता मेल का भी, बस बाबा देखते थे और बस वहीं पर ही निगाह बाबा की जाती थी जहां पर कोई करेक्शन देनी होती, बस इससे बाबा का भी टाइम बिल्कुल बच जाता था और दूसरे का भी। नहीं तो इतने सारा पूरा अकाउंट चेक करें, ऑडिटिंग करें, पूरा ये करें, कितना समय जाएगा। लेकिन जितनी हमारी कुशाग्रता होगी, निर्णय शक्ति कुशाग्र होगी, तो हम ऑटोमेटिकली, हमारी निगाह ही वहीं जाएगी जहां पर करेक्शन देनी। इसीलिए एक तो ये शक्ति की जरूरत है, निर्णय शक्ति, और दूसरी शक्ति की जरूरत है समाने की शक्ति। क्योंकि वर्तमान समय बाबा ने कहा है, अभी बच्चों के सामने दो पेपर विशेष है। कौन से दो पेपर? पेपर तो अनेक बताए हैं बाबा ने, भाई प्रकृति का पेपर है, संस्कारों का पेपर है, कई प्रकार के अशुद्धात्माओं का पेपर है वगैरह, लेकिन बच्चों के सामने दो पेपर, एक है अपने शरीर का पेपर। शरीर का पेपर का मतलब कि क्योंकि आत्मा इस शरीर में है और ये अंतिम शरीर है, आत्मा भले पुरानी है, 84 जन्म पुनर्जन्म लिए हैं, लेकिन ये इस शरीर में है, तो सारे हिसाब किताब जो पहले 21 जन्मों में तो इतना कोई हिसाब किताब नहीं, लेकिन जो बाद के 63 जन्म है उनमें तो बहुत हिसाब किताब है, वो चुकतू इस शरीर से ही करने हैं। क्योंकि आत्मा कोई भी चीज ना भोगना होगी वो इस शरीर को होगी, ये सबसे निकट का साथी है। तो इसीलिए कई बार होता है, कई पूछते हैं, अरे दादियां इतने पुराने, बाबा को भी सुना, ये ऑपरेशन हुआ दादियों को भी, कितने शरीर के, क्यों? क्योंकि आत्मा इतनी पुरानी है, आदि आत्मा है, तो जो उस आत्मा के हिसाब किताब चुकते होंगे ना, वो शरीर के भोगना तो शरीर के द्वारा ही होगी ना, क्योंकि यही साथी है। अभी पुराना 72वां शरीर या 75वां शरीर कहां से लाएंगे, वो तो सब खत्म हो गया। तो इस कारण से इस शरीर का पेपर एक सबसे बड़े से बड़ा पेपर है। इसके लिए कौन सा अभ्यास करें, क्योंकि पेपर मालूम ही कर लिया, लेकिन अगर ये नहीं करा उसकी रेमेडी क्या है, क्या उसका, हाँ क्या करें, इसके लिए जो बाबा को भी देखा वो पेपर, हाँ स्थूल बातें तो दूसरी हैं, कल परसों ही बाबा ने कहा खान पान की संभाल रखो आदि आदि, ये सब तो स्थूल बातें हैं, लेकिन बाबा के कि उससे शरीर के पेपर की जितनी भी व्याधि होगी ना महसूस नहीं होगी, और वो होगी जब चाहे हम शरीर में आए, जब चाहे हमें शरीर से डिटैच होने का अभ्यास। बाबा को ये अभ्यास बहुत पक्का था, बस बाबा हाँ पार्टियों को टाइम दिया होता था, अपने टाइम पर टीचर इंचार्ज जो ब्राह्मणी होती थी वो आती थी, देखती थी बाबा कुटिया में बैठे, या तो कुटिया में मिलते थे या हिस्ट्री हॉल वगैरह में जैसी पार्टी होती थी, कभी एक दो ही होते थे तो अपने कमरे में भी मिल लेते थे बाबा, तो बस आए देखा बाबा आंखें खुली हुई हैं, अपनी मस्ती में मस्त है, टीचर सामने भी आके आके खड़ी हो गई, फिर भी जैसे बाबा का ध्यान ही नहीं, देखते हुए भी ना देखना, वो स्थिति। और फिर वो एक दो बार कहते थे बाबा बाबा, तो थोड़ा सा बाबा को कई बार ना जैसे ऐसा लगता था जर्क सा, कोई ध्यान में नहीं गए, कोई साक्षात्कार में नहीं, लेकिन शरीर से अशरीरी विदेही स्थिति। और हाँ बच्ची बोलो, बाबा पार्टी ये लाए हैं, हाँ हाँ ले आओ पार्टी को, फिर पार्टी आती थी मिलती थी, हाँ और बस उसके बाद वो पार्टी गई, फिर जो भी थोड़ा टाइम मिला फिर बाबा अशरीरी हो जाते। तो जब पार्ट बजाना हुआ, आती थी पार्टी मिली, पार्टी के हालचाल पूछे, टोली खिलाई, एक अलग हुआ, दूसरा मिला, तीसरा मिला, इस तरह सब वन बाय वन मिलते थे, और उसके बाद फिर वो सब गए, फिर टाइम बीच में गैप मिला, 5 मिनट का भी गैप अगर मिला, वो 5 मिनट को भी बाबा सफल कर लेते थे एकदम देह से न्यारे, देह में जब चाहे आए जब चाहे चले जाए, ये स्थिति। मैं बस विदेही हूं, इसके लिए क्या करें, शुरू में मैं आत्मा हूं, अशरीरी हूं, विदेही हूं, इस देह से न्यारी हूं, अलग हूं, महसूस करें मेरी चेतना जैसे यहां तक आए और यहां से जैसे विलुप्त हो रही है, ऊपर जा रही है, मैं जैसे साक्षी होकर अपने शरीर को देख रहा हूं और मेरी चेतना जैसे इस शरीर से अलग है। आत्मा कोई शरीर छोड़ती नहीं है, छोड़े तो फिर तो खत्म ही हो जाए के, लेकिन थोड़ी देर के लिए कॉन्शियसनेस को ना उसे अपने विड्रॉ कर ले। तो जितना जितना शुरू में कई अभ्यास करना पड़ेगा, बाद में इतना अच्छा लगता है जैसे ये हम साक्षी होकर के देख रहे हैं, तो बस कितना चीजें वो साक्षी होकर के, हमने कोई पार्ट प्ले किया, एक्ट किया, 25-30 फोटो खींचे, कुछ भी, बाद में जब फोटो को देखते हैं ना तुरंत, बस वो फोटो है, वो उस दृश्य को याद दिला रहे हैं, लेकिन हम एकदम साक्षी होकर देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम वो पार्ट अभी नहीं पहले प्ले किया था। एक पेपर ये, दूसरा पेपर परिवार का पेपर, ये परिवार है ना हमारा, तो ब्राह्मण परिवार का पेपर, इतना हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है और ये परिवार ही नहीं है, राजधानी स्थापन हो रही है। तो ये राजधानी जब स्थापन हो रही है तो हम ये ख्याल रखें, राजा रानी साहूकार और राजधानी के निकट की आत्माएं और साधारण प्रजा भी तैयार हो रही है और भी उसके नीचे के तैयार हो रहे हैं, तो इसीलिए किसी के पार्ट को देख करके हम कुछ भी आश्चर्य न खाएं, हमारे कोई संकल्प न चले, नहीं तो कई बार ब्राह्मण परिवार बढ़ रहा है और देखते अरे ये तो इतना 40 साल पुराना भाई, 35 साल पुरानी बहन, अभी तक भी इसमें ये कमी, ये कमजोरी, ये कर रही है ऐसा, तो हम उस चीज को ईज ले लेते हैं। उसने क्रोध किया, उसने ये शब्द निकाले, अगर मैंने भी निकाला, मैं तो अभी 15 साल पुराना हूं, ये है। तो क्या है इसके लिए क्या बात ध्यान में रखें, परिवार की बात तो बहुत सामने आती है, कोई कंसर्न बहनों की, कोई भाइयों की, पुरानों की, नयों की, बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन उसके लिए एक तो हम ये बात याद रखें कि किसी भी आत्मा को हम एक काल की दृष्टि से ना देखें। वर्तमान काल की दृष्टि से देख रहे हैं, जैसी उसकी आज स्थिति है इस कारण से हमारी स्थिति भी डावाडोल होती है, लेकिन तीनों कालों की दृष्टि से देखें। पास्ट, ये आत्मा आज जो थोड़ा कमजोरी का पार्ट प्ले कर रही है, ये वही आत्मा है जो सतयुग में ना बहुत महान आत्मा, इसने कितना श्रेष्ठ पार्ट प्ले किया था। हमारा विजुअलाइजेशन ऐसा हो कि उसके आदि और ये अभी पार्ट चल रहा है और बाद में और ये पार्ट जब पूरा हो जाएगा फिर से ये आत्मा सशक्त हो जाएगी। एक तो हर आत्मा को तीनों कालों की दृष्टि से देखें और दूसरा ये भगवान की चुनी हुई आत्मा है। बाबा ने कहा है मेरा लास्ट में लास्ट बच्चा भी जो है ना वो आज के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से श्रेष्ठ। कहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, हमारा ही राष्ट्रपति भवन कितने 100 कमरे हैं उसमें, उनसे भी श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे चुना है, भगवान की नजर उस पे गई है, उसमें कोई ना कोई ऐसा विशेष गुण जरूर है जो अपने समय पर प्रत्यक्ष होने वाला है। आज भले प्रत्यक्ष न हो, अपने समय पर, इस कारण से भगवान, और भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। वो तीनों कालों को जानता है, आदि मध्य अंत को जानता है, इसलिए भगवान का सिलेक्शन गलत नहीं। तो उस पर मेरा क्यों विचार, बाबा आपने ऐसे व्यक्ति को चुना, वो ऐसा पार्ट प्ले कर रहा है, नहीं। तो इस कारण से ये दो पेपर की तरफ हम सब का पूरा अगर ध्यान रहेगा तो क्या होगा, एक अपना विदेही बनने का, जब चाहे देह में आए, जब चाहे देह में, एक दूसरा ब्राह्मण परिवार का। तो उससे क्या होगा, जितने आने वाले ना, ये चुक है हमारा समय, संकल्प, रूपी खजाना, ये सब क्यों वेस्ट जाता है, क्योंकि जब हम किसी भी, क्योंकि अभी हमारा परिवार ये है, कोई अज्ञानी अगर कोई ऐसा कर्म करेगा हमें इफेक्ट नहीं होगा उसका, अज्ञानी है नहीं जानता वह, लेकिन ज्ञान होगा तो हमारे बहुत संकल्प चलते हैं, बहुत चर्चाएं होने लगती हैं आपस में। इसीलिए बाबा ने वो भी बोला था, एक खजाना वाणी का खजाना, शब्दों का खजाना, पर चिंतन, पर निंदा आदि वो करना। तो ये दो पेपर आएंगे, इसके प्रति हम सावधान रहेंगे। ये रेमेडी जो बता रहे हैं तो उस बात पर ध्यान रखेंगे तो कोई भी खजाना लीकेज या वेस्टेज नहीं होगा। होने से पहले ही जैसे ही आपने पर निंदा शुरू किया, पर चिंतन, तुरंत याद आ जाएगा कि अरे मुझे तो कहा गया उस आत्मा को तीनों कालों की दृष्टि से देखो, ये भगवान की चुनी हुई आत्मा है। इसलिए अब फिल्म भी होती है, सबका पार्ट तो एक जैसा होता नहीं, हीरो अलग प्ले करेगा, विलेन अलग होगा, कॉमेडियन अलग होगा, नाचने गाने वाले अलग होंगे, सबका पार्ट अपना अपना होता है, तभी उस फिल्म में आनंद आता है। ऐसे ही बाबा कहता है सृष्टि रूपी नाटक बहुत बहुत बढ़िया बना है, बाबा को अति प्रिय है, इसीलिए भगवान को वो अति प्रिय है। और मैं कहूं नहीं बाबा ये तो ठीक नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, अरे जो बात बाप को प्रिय है वो मुझे प्रिय है, वही तो बाप के फॉलो करने का एक माध्यम हुआ। इस कारण जिस बाप से, जिस बात से बाबा को परहेज ये नहीं करना है, उससे मुझे भी परहेज। इस कारण से एक ये चीज देखना है अपने को। मैं बस 10 मिनट में वो शेयर करना चाहता हूं कि ये बाबा इन सब की जैसे प्रतिमूर्ति थे, साकार बाबा को कई बार हम मिले, लेकिन जब अंतिम दो दिनों में मिले तो एक कुछ बातें हमने विशेष नोट करी कर्मातीत अवस्था के निकट, क्योंकि हम सबको भी कर्मातीत तो बनना ही है। उन बातों को क्योंकि ध्यान में रखेंगे तो बाबा की तरह कर्मातीत हो जाएंगे। तो एक तो उस बात में पहले जब भी मिलते थे हम बाबा को अपने सारे हालचाल और सब बताते थे, बाबा समाधान देते थे, सेवा की बात हो, कोई ज्ञान की बात हो, योग की बात हो, कैसी स्थिति है उसका प्रश्न का उत्तर। लेकिन इसमें जब 17 और 18 जनवरी को हम लगभग 6-7 बार बाबा से, क्योंकि यहां ज्यादा पार्टियां नहीं थी, मधुबन बिल्कुल शांत था और बाबा से हर जगह बाबा अवेलेबल होते थे, तो उसमें क्या देखा हमने कि हमेशा तो बताते थे बाबा को तब बाबा उत्तर देते थे, लेकिन इन दो दिनों में जब बिल्कुल कर्मातीत अवस्था के करीब बाबा पहुंच गए तो देखा कि बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा जरा सी दृष्टि दी और दृष्टि देकर बस बाबा कहते थे बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाए। यानी कि एक मिनट में प्रश्न भी बता देते थे, किस लिए हम गए हैं उसका समाधान भी बता देते। ये है कौन सी स्थिति, कर्मातीत स्थिति, जिसके लिए बाबा कहते हैं मन जीते जगत जीत की स्थिति। जगत जीत तो वही होगा ना, मन, जिसने सबका मन जीता हुआ होगा। ये मन जीतने का तो है, हमारे मन में क्या चल रहा है दूसरा तुरंत बता दे, इसका मतलब उसके अपने मन में कोई भाव नहीं है। उस समय वो मन को जीता है, जैसे पानी होता है, पानी में ना स्थिर पानी होगा तो अपनी छवि बिल्कुल दिखाई देगी, एक कंकड़ फेंक दो लहरें उत्पन्न होंगी तो अपनी छवि नहीं दिखाई देगी। ऐसे ही अगर बाबा के या किसी के अपने संकल्प अगर होंगे तो वो दूसरे के मन के भाव को नहीं पढ़ सकता। तो इस कारण से कई बार कहते हैं मेरा भाव ये नहीं था, मेरे विचार मन के अंदर ये था लेकिन मुंह से ये दूसरे शब्द निकल गए। तो जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे ये सूक्ष्म वाइब्रेशंस को हम कैच करने में बिल्कुल निपुण और दूसरे के मन के भावों को पढ़ के उसके समस्या का समाधान, क्योंकि अंत समय में यही पार्ट ज्यादा चलने हैं। कोई आएंगे दुनिया वाले अपने कष्ट लेके, दुख लेके, अपनी इच्छाएं लेके, वरदानों के इच्छा लेने के लिए, लेकिन ऐसी अनुभूति उन्हें होगी कि वो आए और आ करके वो जैसे कि पूरा, बस कहने का समय नहीं होगा, हजारों आत्माएं होंगी, कौन किसका प्रश्न, बस उनके मन को दृष्टि दी, उनके मन के भावों को जाना। और जैसे कहते हैं भगवान जब भक्त को ना इच्छा पूर्ण करने से पहले क्या करते थे, साक्षात्कार, और बस एक ही शब्द मुंह से निकलता था, कौन सा, तथास्तु, यानी जो तुम्हारी इच्छा है वो पूर्ण। मैंने तो अनुभव किया 6-7 बार वो, और लास्ट 18 जनवरी की रात को बाबा मुरली चला रहे थे, उस समय भी ये मेरे मन में एक संकल्प उठा, मुरली सुनते सुनते 18 जनवरी की रात को तुरंत बाबा तक पहुंचा और बाबा ने नाम लेके तुरंत ही उसका वर्णन किया और बहुत हम तो खुशी से भर गए। तो ये है एक वो स्थिति। दूसरी स्थिति क्या देखी, क्योंकि बाबा ने ना 18 जनवरी को ही ईशु दादी पत्र, तब तो इंटरनेट और ईमेल ये सब होते नहीं थे, तो तब पत्र लिखते थे बाबा, गोल्डन लेटर्स हिंदी में, सिंधी में लिखते थे और उसके बीच बीच में हिंदी में ईशु दादी उसका ट्रांसलेशन करके वो भेजते रहते थे। तो बाबा ने ना कहा ईशु दादी को, बच्ची आज जितने भी पत्र पेंडिंग पड़े हों बिना उत्तर दिए उन सब को आज पत्र लिखवा दो पूरा। देखो कैसे बाबा को अंत समय का पूरा आभास हो गया था, जो हम कहते हैं भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु का वरदान, तो और कोई वरदान नहीं, ये जैसे आज मेरा ये अंतिम समय है, वो जो काम पेंडिंग मनक्की लेक का जो म्यूजियम है उसकी फाइल पर बाबा ने हस्ताक्षर किए और जो भी रुके हुए काम थे सबको पूर्ण करके फिर बाबा रात्रि क्लास में, रोज रात्रि क्लास 8:45-9 बजे होती है, उस दिन बाबा ने कहा बच्चे आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, सबको बता दो। सबको बता दिया गया और सब 7 बजे तक क्लास में आ गए। उसके बाद बाबा भी आए और बाबा ने मुरली चलाई और बस वो मुरली ऐसी, वैसे नॉर्मल केस में कई बार बाबा को खांसी भी आती थी और हंसी में बाबा कहते थे देखो ये बाबा की सखी है। बाबा कई बार शिव बाबा से कहते बाबा ये मेरी सखी से मेरा पीछा छुड़ाओ, तो शिव बाबा क्या कहते थे ये तो तुम्हारा कर्म भोग है बच्चे, बाबा इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो जब ब्रह्मा बाबा को भी कोई कंसेशन नहीं तो आपको या मुझे कोई कंसेशन होगा नहीं। तो इसने जो भी कर्म भोग आए सामने उसे खुशी खुशी हम स्वीकारते चले। तो उस दिन बाबा ने ना जब मुरली चलाई, सुबह से बाबा का तबीयत भी थोड़ा सा नरम था, ठंडी के दिन थे, लेकिन रात्रि क्लास में बाबा ने मुरली चलाई तो एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई। नॉर्मल केस में कई बार गला साफ करने की ऐसे आवश्यकता होती थी, लेकिन बाबा को, और जब कभी खांसी आती थी आंख गीली हो जाती थी, हमें लगता था बाबा को जैसे बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन बाबा जो है ना वो आते थे और मतलब ये खांसी आई भी तो बस ये खांसी रूपी परिस्थिति आती थी लेकिन स्वस्थिति को इतनी मजबूत बना के, पास में ट्रांसलेट का चित्र रखा रहता था, अभी भी है, श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का। बाबा कहते देखो बच्चे अभी तो ये खांसी आ रही है, कष्ट दे रहे है, पुराना शरीर है, पुराने तत्वों का बना हुआ और ये सब हो रहा है, लेकिन बस अभी हम ऐसा जा रहे हैं नई दुनिया में, बाबा ऐसा मिशन कृष्ण बनेगा और इस तरह सारा सुख की दुनिया होगी, चारों तरफ मौसम भी प्रकृति भी कितनी सुखदायी होगी, शरीर भी कितना सुखदायी होगा, कोई कष्ट नहीं। तो अपनी स्वस्थिति को बाबा इतना मजबूत बना लेते थे कि ये परिस्थिति, ये खांसी रूपी परिस्थिति तुरंत कैसे गायब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था और फिर बाबा की मुरली पूरी की पूरी चलती थी। तो हम भी परिस्थितियों के वशीभूत न होके स्वस्थिति को मजबूत करते चले। उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। 18 जनवरी की रात्रि क्लास, वो लास्ट की टेप भी वहां मिलती है ओम शांति भवन के नीचे जो ऑडियो सेक्शन है उनसे कहेंगे साकार मुरली जो अंतिम वाली 18 जनवरी 69 की, तो आप देखोगे बाबा को एक बार भी ना खांसी आई और बस बाबा को इतना फ्लॉलेस बाबा ने मुरली चलाई। उसके बाद बाबा उठे, उठ करके थोड़ा सा हर बच्चे को दृष्टि दी, दृष्टि जितने थे थोड़े ही बैठे हुए थे, दादी प्रकाशमणि सबसे आगे बैठे हुए थे तो दादी जी को दृष्टि दी, फिर सबको भी दृष्टि, बार बार फिर एक कदम चले फिर रुक गए फिर दृष्टि दी सबको। तो हरेक का ऐसा लगा, वह सबको लग रहा था बाबा जैसे हमें भरपूर कर रहा है। अब बाबा दरवाजे तक गए और बाबा ने कहा, क्या कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द अभी तक कभी भी इतने 33 वर्षों के इतिहास में साकार बाबा ने विदा लेता है ये शब्द कभी नहीं कहे। पहली बार बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, तो विदा ही लेता है। तो बस ये कह के बाबा गए। अब बाबा अपने कमरे में जाके बस सहज रीति से थोड़ा सा चेस्ट में जैसे पेन हुआ और बस आत्मा जैसे मक्खन से बाल की तरह निकल गई। तो ये इच्छा मृत्यु का है, हम सब भी इसके एक्चुअली इसी के लिए बाबा तैयार कर रहा है। अगर प्राकृतिक आपदाओं की वजह से दुनिया की तरह हमारी भी मृत्यु हुई, हमारी भी कोई बहुत फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग गिर गई, उन सब की वजह से तो अंत में तो हाहाकार होगा, चीत्कार होगा सब तरफ, तो अंत में सो गति तो होगी नहीं, दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए ऐसा हमें भी आभास हो, हमारी स्थिति हो। और बाबा के एक शब्द है महावाक्य, क्या, बाबा बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ है। बाबा बच्चों की रक्षा के लिए बंधा, कोई परिस्थिति आए और आप पहले जीवन काल में उसका अनुभव करो। कैसे? बाबा ने कहा कोई एकदम विपरीत विकट परिस्थिति आई आपके सामने, कौन सा शब्द हम इस्तेमाल करें? मेरे साथी, मेरे बाबा। बाबा ने कहा है साथी शब्द का, मेरे साथी आओ आओ मुझे इस परिस्थिति से निकालो, मेरी रक्षा करो। और आप देखोगे किस तरीके से उस परिस्थिति से बाबा कोई ना कोई को निमित्त बना देगा, परिस्थितियां बदल देगा और ये होगा, लेकिन आप उस विकट परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे, उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो ये हमने तो कई बार अनुभव किया है, बाबा को इन्वोक करो। बाबा ने कहा है, बाबा को तो बच्चों को कई बार कहा है बाबा को यूज करो, बच्चों को बाबा को यूज करना नहीं आता। यूज करो, भगवान हमारा साथी है। आज ही कोई प्राइम मिनिस्टर का अगर बहुत क्लोज हो, प्रेसिडेंट का या बड़े आदमी का, कोई विकट परिस्थिति आई तुरंत उन्हें फोन करने का प्रयास करेंगे और उससे मदद मिल जाएगी। वो तो लौकिक दुनिया की बात है, लेकिन सबका तो ऐसा होता नहीं। लेकिन हमारे साथ सर्वशक्तिमान है, कल्पना की बात नहीं है, कहने की बात नहीं है, उस चीज में हम उनको इन्वोक करें, बाबा आओ मुझे इस परिस्थिति से निकालो, बाबा बाबा मेरे साथी, मेरे बाबा आओ। और उससे क्या होगा, जब ऐसी स्थिति हो जाएगी ना, तो अंत समय में भी बाबा ने कहा है बाबा बच्चों की रक्षा के लिए बंधा है, बस प्रोवाइडेड ये हो कि बुद्धि जो है ना वो बच्चों का ये वायरलेस की जगह वॉइसलेस बुद्धि हो जाए। अभी तो ये सब वायरलेस कनेक्शंस हैं, ये टेलीफोन मोबाइल आदि आदि जितने हैं कंपनी, लेकिन अंत में तो ये कोई काम करेगा नहीं। क्या काम करेगा? वॉइसलेस कनेक्शन। और जितना हमारा निर्विकारी वॉइसलेस कनेक्शन होगा उतना उतना हम वो बनते जाएंगे। तो इस तरीके से, और अंतिम बात जो देखी बाबा की हमने, कि बाबा कैसे प्रकृति जीत भी बना, मन जीते जगत जीत और मृत्यु का आबाद, ये सब तो ठीक है, लेकिन साथ साथ ये प्रकृति जीत, शरीर तो पांच तत्वों का बना है ना, तो 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा और 18 जनवरी की रात भर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन इतने लगभग 65 घंटे के बाद बाबा का संस्कार किया गया, लेकिन शरीर वैसा ही एकदम चमकता हुआ, कोई काला नहीं पड़ा, कोई दुर्गंध नहीं आई, कोई इंजेक्शन भी नहीं दिया गया था बाबा को, कोई केमिकल लोशन नहीं लगाया गया था, कुछ नहीं। लेकिन ये पांच तत्व की प्रकृति इसने भी अंत तक साथ दिया। और हमें याद है जब बाबा को शांति स्तंभ पर ले गए हम लोग और स्नान वगैरह भी कराया, बाबा के शरीर में काफी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी, नहीं तो आत्मा जब छोड़ती है शरीर तो कहते हैं 5-8-10 घंटे में ही शरीर अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है, लेकिन पूरा जैसे बहुत हद तक ये कोई चीज में कोई कठिनाई नहीं हुई और यहां पर संस्कार किया गया। ये है प्रकृति जीत का लक्षण। मन जीते वो सब तो हम कर ही रहे हैं मुरली के द्वारा, ज्ञान योग तपस्या, लेकिन ये हमारे पांच तत्वों का बना शरीर ये भी अंत तक साध्य, और ये कैसे वो तो एक बहुत बड़ी चीज है और क्लास अलग होती है। पांच तत्वों से हम कैसे प्रकृति जीत इनसे बन सकते हैं, लेकिन आज तो ये सिंपली आंखों देखी बात की बाबा की जो अंतिम अवस्था देखी है। ये प्रकृति जीत भी बनना है हम सबको मिल करके, और जितना जितना ये बनते जाते हैं उतना क्या होगा, ये अंत तक की स्थिति बता दी, और अंत तक की तब होगा जितना खजानों का एक्यूमुलेशन किया होगा। लीकेज बस हमारी वो लीकेज ज्यादा क्यों होती है पता है? बाबा ने बताया अज्ञान काल में कोई विकर्म किया है तो उसका एक का एक गुना ही प्राप्ति या दंड होता है, लेकिन ज्ञान मार्ग में एक 100 गुना दंड या पश्चाताप और सगुना प्राप्ति। प्राप्ति का तो मालूम है, जितना तन मन धन समय सेवा में लगाते हैं वो प्राप्तियां हैं। लेकिन जो कुछ भी अगर ज्ञान की मर्यादा के विपरीत अगर कोई बात हुई और होती है, उसका निगेटिव लीकेज खजाना दर 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 करके वर्षों की कमाई के लिए कुछ सेकंड ही काफी है उस कमाई को खत्म करने के। इस कारण से इस बात पर जितना ध्यान देंगे, बाबा का अंत तक देखा, कोई परिस्थिति इतने बाबा ये हो गया, फलाने ने यज्ञ में ये ऐसा, अच्छा बच्ची ये चलो बच्ची, कोई व्यर्थ संकल्प ऐसा चले क्यों हुआ, उसे बुला के कुछ बाद में उसे बुला के सावधानी भी देंगे, लेकिन इतने शांत मन से कि उसके ऊपर पर वो अपने आप ही कबूल लेता था, आई एम सॉरी आगे से ये भूल नहीं होंगी और आदि आदि। चलो समय हो गया, इसीलिए हम सब यही संकल्प रहे कि यहां से अब ये भट्टी करके जा रहे हैं ना, तो बस अपने लीकेज और उसको खजाने को ना वेस्टेज होने से संपूर्ण रीति से बचाएंगे और बाबा की तरह कर्मातीत अवस्था को प्राप्त। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। मोहन सिंघल भाई साहब का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी को पता है कि ब्राह्मण जीवन में लीकेज और वेस्टेज सभी की लाइफ में कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है, थोड़ी आती है, ज्यादा आती है, पर हमें इन्होंने आज इतने वैल्यूएबल रेमेडीज और टिप्स दिए हैं, हम उनको डेफिनेटली भाई साहब ध्यान में रखेंगे अपने पुरुषार्थ में, भूलेंगे नहीं कुछ बातें। भाई साहब ने दो इम्पोर्टेंट खजानों के ऊपर अटेंशन दिलवाया है, जल्दी से बोलिए, समय का और संकल्प का, दो शक्तियां बहुत इम्पोर्टेंट, निर्णय शक्ति और समाने की शक्ति, दो इम्पोर्टेंट अभ्यास हैं, शरीर में आना और दृष्टि, दृष्टा और दृश्य, और ब्रह्मा बाबा के लास्ट के इतने वैल्यूएबल अनुभव वो हमारे सामने इन्होंने बहुत क्लैरिटी से रखे हैं, तो हम उसका अभ्यास करते जाएंगे। ये हमारा बेस्ट तरीका है बाबा को, मधुबन निवासियों को, बड़े भाई बहनों को रिटर्न में देने का, इसीलिए फिर से भाई साहब को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।
सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।